मोक्षमार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आश्रव पदार्थो व्याख्यातस अथ सप्तमोध्यायः सातवां अध्याय। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान हो चुका है। तत्प्रारंभ काल एव उक्तम शुभ पुण्य सेति तत्सामान्येन उक्तम। लेकिन उसके प्रारंभ में आश्रव अधिकार के प्रारंभ में शुभ पुण्य से अशुभ पापस से ऐसा शुरू में कहा था। तत् सामान्य नोक्त वो सामान्य रूप से कहा था। तद विशेष प्रतिपत्त्यर्थम कह पुनः शुभ इत्युक्ते इदम उच्यते। उसकी विशेष जानकारी के लिए बोलते हैं कि शुभ है क्या चीज, जिसको आप कह रहे हैं कि शुभ योग से पुण्य होता है। शुभ योग पुण्य का कारण है और अशुभ योग पाप का कारण है। पुण्य का कारण है इसलिए वो शुभ योग नहीं है। ये याद आपको याद होगा, वो शुभ परिणामों से रचित है इसलिए शुभ योग है और उसका कार्य पुण्य है। तो फिर वो है क्या शुभ योग, कैसी शुभ योग की प्रवृत्तियां होती हैं, वो आप कुछ विस्तार से बता दीजिए। तो ऐसा प्रश्न उठने पर तद विशेष प्रतिपत्त्यर्थम उसकी विशेष जानकारी के लिए शुभ क्या है वो बताने के लिए तत्वार सूत्र का सातवां अध्याय आचार्य महाराज प्रारंभ करते हैं, उमा स्वामी आचार्य। लेकिन अब तत्वार्थ वार्तिक नाम का एक ग्रंथ है, आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित है। उन्होंने जो भूमिका बताई है इसकी वो भी बड़े महत्व की है। आचार्य क्या कहते हैं इसको अपन देखते हैं एक बार, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र तो वही के वही है। अब अलग अलग आचार्यों ने जो अपना दृष्टिकोण रखा है वो सब जानने योग्य होता है। आश्रव पदार्थो व्याख्यातस व्याख्यात प्रतिज्ञयोक्तोष्टोत्तर शत भेद संख्यो भो विचारः। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान जिसकी व्याख्या की प्रतिज्ञा के माध्यम से आप बता चुके आश्रव पदार्थ, और उसमें जीवाश्रव जो होता है जीवाधिकरण उसके 108 भेद बताए थे। मन वचन काय कृत कार्य तनमोदना क्रोध मान माया लोभ और एक सौ आठ हुए थे ना। समरम समारम आरंभ ये मिला करके इनको सबको गुणित कर दो, तीन से तीन से तीन और चार ऐसे हो जाता था। तो वो 108 प्रकार का आपने बहुत विचार करके ये सब बताया सद्वेधा। अब लेकिन आश्रव के दो भेद होते हैं पुण्य और पाप। आपने तो आश्रव अधिकार में सबको एक साथ बता दिया, पूरे आठों कर्मों को बता दिया। तो सांप्रायिक निमित्तत्वात वो वैसी कषाय होती है, मंद कषाय जो होती है वो शुभाश्रव में निमित्त बनती है, तीव्र कषाय जो होती है वो अशुभाश्रव में निमित्त बनती है। तत्र पुण्याश्रव व्याख्येय, तो अब पुण्याश्रव का व्याख्यान करने योग्य है क्योंकि प्रधानत्वात वो प्रधान है। पुण्य जो है उसी का ठाट है दुनिया में, पाप तो रोता रहता है। पाप करते समय नहीं रोता है, परिणाम काल में रोता है। अब देखिए इसके बाद एक वाक्य ऐसा लिखा है आचार्य महाराज ने जो अत्यंत महत्वपूर्ण और वजनदार है। पुण्याश्रवो व्याख्येय प्रधानत्वात् तत्पूर्वकत्वान् मोक्षस्य। पुण्याश्रव अलग से व्याख्यान करने योग्य है क्योंकि वो प्रधान है। प्रधान क्यों है? क्योंकि मोक्ष का कारण है। आज तक कोई भी बिना पुण्य के मोक्ष नहीं गया। शुक्ल ध्यान तक पहुंचाने वाला पुण्य होता है। शुक्ल ध्यान भले ही पुण्य पाप का आश्रव न हो, लेकिन शुक्ल ध्यान के आसन पर कौन बैठालता है? पुण्य। कितनी बड़ी बात है। तत्पूर्वकत्वान मोक्षस्य, वो शुभास्त्र मोक्ष का कारण है, उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। यद्देवं उच्यताम कैस्ते क्रिया विशेषाः प्रारभ्यमाणास्तस्याश्रवा भवन्ति इत्यत्रुच्यते। ये बताइए कि वे किनके माध्यम से वो क्रियाएं प्रारंभ की जाती है जो उस पुण्य के लिए आश्रव हेतु बनती है? तो बोले व्रति भी, व्रतियों के द्वारा वो क्रियाएं प्रारंभ होती है। अब यहां पर पुण्याश्रव का अर्थ वो साधारण पुण्य नहीं है जो दुनिया में लोग करते रहते हैं। यहां तो मोक्ष में सहायक पुण्य की बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये पूरा सम्यक मोक्ष शास्त्र इसका दूसरा नाम है। तो व्रतियों के द्वारा में तत्रा निर्धारिते यत्रा विशेष लक्षणत्वात्। वो अभी निर्धारित नहीं हो पाया है क्योंकि उनके लक्षण विशेष हमें जानकारी में नहीं है। व्रतस्य तत्प्रसिद्ध्यर्थम इदम उच्यते। तो व्रत के लक्षण हमें जब तक नहीं मालूम होंगे तो फिर व्रती जो पुण्य कमाएगा उसका परिचय कैसे होगा? और व्रती जो पुण्य कमाएगा वो मोक्ष का कारण है बोल रहे हैं। आम आदमियों का पुण्य मोक्ष का कारण नहीं है, व्रती जो पुण्य कमा रहा है वो मोक्ष का कारण है। तो इसलिए यह सूत्र कहा जाता है, अथवा उक्तम एतत् सद्वेद्याश्रव विधाने भूतव्रत्यनुकम्पेति तत्र न ज्ञायते किं व्रतम्। सातावेदनी के आश्रव में आपने छठे अध्याय में कहा था भूत माने संसारी प्राणी और व्रतियों के प्रति अनुकंपा करने से साता का आश्रय होता है। तो ये व्रत क्या है ये हमें समझ में नहीं आया। को व्रती थी और अव्रति कौन है? तन निर्धारण अर्थम इदम उच्यते, उसका निश्चय करने के लिए, निर्धारण करने के लिए इदम सूत्रम उच्यते। यह सूत्र आचार्य उमास्वामी भी उमास्वामी आचार्य द्वारा कहा जा रहा है। हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम्। हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह, इन पांच से विराम ले लेना। विरामो विरति, विरमणम विरति, विराम ले लेना, स्टॉप लगा देना। विराम का अर्थ फुल स्टॉप होता है, उसका नाम व्रत है। अब हिंसादिक जो है उनके लक्षण आगे कहेंगे, अभी विरति के बारे में बताते हैं कि विरति कैसे होती है। सिद्धांत की अपेक्षा उस पर देखो ध्यान देना। ऐसा नहीं कि पाप छोड़ दिया और आप व्रति हो गए, मात्र उतना नहीं है। अंतरंग में कुछ घटना होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। चारित्र मोहोपशमक्षयोपशम निमित्तौपशमिकादि चारित्राविर्भावात् विरमणम विरति। क्या बात कही है। चारित्र मोह यानी कषाय, इनके उपशम क्षयोपशम से के निमित्त से और जो होने वाले औपशमिक आदिक चारित्र हैं उनके प्रकट होने से जो पापों के प्रति विराम लग जाता है उसका नाम विरति अर्थात व्रत है। अद्भुत बात है। अब यही बात आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने रत्नकरण श्रावकाचार में भी कही है, अगर ध्यान दो तो बात समझ में आती है। आचार्य महाराज ने क्या कहा, चारित्राधिकार की पहली कारिका में उन्होंने कहा, 48 नंबर श्लोक काव्य में उन्होंने कहा कि मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते स्वादु। देखो ये क्या कह, पहले कह रहे हैं कि मोह रूपी तिमिर का अपहरण हो जाने पर क्या अर्थ है इसका, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के हट जाने पर दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और लाभात उसके कारण हेतु प्रयोग पंचमी, उसके कारण अवाप्त संज्ञान सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया। जैसे सम्यक दर्शन हुआ सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो सम्यक ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है ऐसा साधु, साधु यानी सज्जन सम्यक दृष्टि, राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते, राग द्वेष से छुटकारा पाने के लिए चरणम चारित्र को प्रतिपद्यते स्वीकार करता है। अब चारित्र को स्वीकार करता है इसका अर्थ क्या हुआ, वो कोई अंतरंग में लब्धि रूप परिणाम करता है, कोई विशिष्ट परिणाम होता है उसके, और उन परिणामों के होने पर जो उसके प्रति एक विमुखता आ चुकी है पापों के प्रति, तो उसके बाद की कारिका में आचार्य कहते हैं, अभी तो क्या है कि उसको एक प्रक्रिया से स्वीकार कर रहे हैं, जैसे एकदम से छठा सातवां गुण स्थान नहीं हो जाता, एक विधि करते हैं दीक्षा विधि, उसके बाद फिर वो गुणस्थान बदलता है, साधु का गुणस्थान प्राप्त होता है, वहां गुरु वगैरह सब रहते हैं, साक्षी परमेश्वर छठ साक्षी का दीक्षा होती है मुनियों की, उनकी साक्षी में वो व्रत महाव्रत लेते हैं। अब इसी प्रकार यहां पर भी ये जो व्रत धारण की प्रक्रिया होती है हमेशा गुरु के सानिध्य में होती है, और यदि कदाचित ऐसी स्थिति बने कि ना मिले गुरु, तो फिर जिन साक्षी में या फिर क्षेत्र की साक्षी में, जैसे एक सिद्धप्पा स्वामी थे, अब उस समय कोई ऐसे दीक्षा दाता कोई थे ही नहीं साधु, तो उन्होंने चंद्रप्र भगवान की टोंक में मुनि दीक्षा ले ली, और इतने अच्छे साधु बने वो कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उनसे ब्रह्मचर्य लिया आजीवन 18 साल की उम्र में। तो ये जो भी बाह्य प्रक्रिया है वो हो गई, तो अब क्या हो गया, राग द्वेष निवृत्तेर, उसके बाद की कारिका पर ध्यान देना, क्योंकि आचार्यों के वचन कितना तालमेल रखते हैं एक दूसरे से। कभी 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 ऐसा लगता है ना कि नहीं, वहां अलग विवक्षा से ये बात कह रहे हैं और यहां अलग विवक्षा से कह रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन देखो आप सब में अभिप्राय वही है। अभी जो अपन ने पढ़ा उसमें उन्होंने पूरी प्रक्रिया दी अंतरंग की कि चारित्र मोह के उपशम क्षयोपशम से जो औपशमिक औपशमिक भाव उत्पन्न होता है और पापों के प्रति विराम लग जाता है उसका नाम चारित्र है। पढ़ा था ना पे, तो वहां जो श्लोक है संबंधभद्र स्वामी कह रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं, राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितोपचारो। अनपेक्षितार्थ वृत्ति क पुरुष सेवते नृपतीन, बोले कि जिसको आजीविका की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कौन मनुष्य राजा की सेवा चाकरी करेगा। इसी प्रकार जिसके राग द्वेष चले गए, अप्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी राग द्वेष चले गए, तो फिर ऐसा कौन मनुष्य होगा जो स्थूल पापों का सेवन करेगा। ये बात है। नहीं, थे ये दो थे एकदम स्टार्टिंग में ही। आचार्य महाराज ने दो कारिकाओं में बात कर दी अपनी, संबंध भद्र आचार्य ने। यानी अपन सोचते हैं कि उनकी अलग स्टाइल है और फिर उनके ज्ञान का फील्ड अलग है, पर आप देखना कि कोई भी आचार्य मूल सिद्धांत को छोड़ते नहीं है। वो कैसी भी स्टाइल हो, कैसा भी फील्ड हो उनकी प्रभावना का। अब जैसे आप तो मीमांसा पढ़ो तो फिर अलग ही प्रकार का वो मिलता है उसमें, भगवान की स्तुति। अब संबंध भद्र स्वामी है, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ो तो उसमें भी एक अलग प्रकार की स्तुति है। वैसी स्तुति आपको सब जगह नहीं मिल सकती। लेकिन अब जब रत्नकरण की बात आती, व्रत की बात आती, तो उसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। विरमणम विरति, एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन, बहुत महत्व का वाक्य है। चारित्र मोहोपशम क्षयोपशम निमित्तौपशमिकादि चारित्राविर्भावात् विरमणम विरति। चारित्र मोह के उपशम, क्षयोपशम के निमित्त से, औपशमिक आदि चारित्र के आविर्भाव पूर्वक जो विराम लग जाता है पापों के प्रति, उसका नाम व्रत है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि व्रत जो होता है वो मात्र द्रव्य व्रत नहीं होता। यहां पर भाव व्रत और द्रव्य व्रत दोनों को ग्रहण किया गया है। फिर और क्या कह रहे हैं व्रत के बारे में। व्रतम अभिसंधि कृतो नियमः बुद्धिपूर्वक परिणामोभिसंधि। जो अपन होश हवास में एक परिणाम बनाते हैं, अपना एक विचार बनाते हैं, उसका नाम अभिसंधि होता है। और इदमेव इत्थमेव वा कर्तव्यम, यही करने योग्य है। अन्य निवृत्ति ही, और अन्य इससे अन्य त्यागने योग्य है। इस तरह का जो नियम होता है उसको व्रत कहते हैं। अभिसंधिना कृत, अभिसंधि कृत, अभिसंधि पूर्वक किया गया जो नियम है, सर्वत्र व्रत व्यपदेश भाग भवति। उसको सर्वत्र, जहां जहां व्रतों का चर्चा आएगी, वहां पर यही लेना कि वो अपने आप छूटी हुई चीजें नहीं है, अभिप्राय पूर्वक छोड़ी हुई चीजें हैं। किसी दिन आपको मौका नहीं मिला, रात्रि भोजन आपका उस दिन छूट गया, कर नहीं पाए, तो फिर वो व्रत नहीं कहलाएगा आपका। यहां कह रहे हैं कि अभिप्राय पूर्वक इंटेंशन के साथ अगर आप त्याग करते हैं तब वो व्रत बनता है, व्रत संज्ञा को प्राप्त होता है। उससे हटना है, उससे विराम लेना है पांच पापों से, इसलिए पंचमी का प्रयोग किया है। अपादान, देश सर्वतोणु महती। अब वो जो विराम है, यदि देश विराम हो, देश विराम का अर्थ होता है अपूर्ण विराम हो, देश का अर्थ अपूर्ण भी होता है, तो जैसे भरत क्षेत्र है उसमें अनेक देश हैं, तो वो देश अकेले में भरत क्षेत्र नहीं है, वो भरत क्षेत्र के हिस्से हैं। उसी प्रकार देश विरति का अर्थ क्या होगा, आंशिक विरति। और सर्वतो, देश सर्वतोणु महती, देशतः और सर्वतः, तसिल प्रत्यय किया है, एक देश त्याग करने से अणुव्रत होता है, सर्वदेश त्याग करने से महाव्रत होता है। तत्स्थैर्यार्थम भावनाह पंच पंच, उन पांच व्रतों की स्थिरता के लिए पांच पांच भावनाएं हैं। एक एक व्रत की पांच पांच भावनाएं हैं। पांच पांच दो बार इसलिए लिखा है कि अगर अकेला एक पांच लिखते तो फिर ऐसा लगता है कि एक एक व्रत की एक एक भावना होगी, तो टोटल पांच होगी, पर ऐसा नहीं है। पंच पंच यानी एक एक व्रत की पांच पांच भावना है। पर तत्स्थैर्यार्थम, उनकी स्थिरता के लिए, इसलिए जब भी व्रती हो कोई तो पांच भावनाओं पर विशेष ध्यान दे तो व्रत स्थिर रहता है। तो यद्येवम् आद्यस्य अहिंसा व्रतस्य का इत्युच्यते, तो फिर ये बताइए कि जो प्रथम अहिंसा व्रत है उसकी कौन सी भावनाएं हैं। वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच, वचन गुप्ति मनोगुप्ति ईर्या समिति आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन यानी प्रकाश में भोजन लेना जब सूर्य उदित हो उस काल में, ये अहिंसा की पांच भावनाएं हैं। तो इससे रात्रि भोजन का त्याग हो गया। अगर आप अहिंसा व्रती हैं तो रात्रि भोजन आपको छोड़ना होगा। अब एक देश त्यागी है तो फिर उसका अलग गणित रहता है। जैसे अणुव्रती हैं तो अणुव्रतियों के लिए थोड़ा अलग नियम है, महाव्रतियों के लिए अलग है। फिर सत्यव्रत की क्या भावना है, तो बोलते क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीच भाषणंच पंच। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, ये चार प्रत्याख्यान हो गए। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। और अनुवीचि भाषण, वीचिम अनुसृत्य इति अनुवीचि, अनुवीचि च तत् भाषणम कर्मधारय समास अनुवीचि भाषणम। वीचि का अर्थ होता है तरंग, लहर, कल्लोल, उसका अनुसरण करके भाषण करना अर्थात वक्तव्य देना, बोलना। कौन से तरंग का अनुसरण करके, वीर हिमाचल तैनिक सी, जो महावीर स्वामी से जो जिनवाणी रूपी गंगा निकली ना, यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर् जगति जनतां यास्नपयति इदानीम पेशा बुध जन मरालैः परिचिता। महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। वो तरंग है, वो जो गंगा है जिनवाणी रूपी गंगा, उसकी तरंग के ऐसे विपरीत दिशा में बहते हुए बोलने से तो अनुवीची भाषण नहीं होगा, प्रतिवीची भाषण होगा। अनुवीची का अर्थ होता है उसकी धारा में वचन बोलना। अब देखिए दो प्रकार के असत्य होते हैं, एक राग द्वेष से होने वाले और दूसरा अज्ञान से होने वाले। तो ये चार जो पहले के प्रत्याख्यान बताए हैं वो राग द्वेष के प्रत्याख्यान है। क्रोध और भीरुत्व ये द्वेष है, और लोभ और हास्य ये राग है। तो और राग द्वेष में से भी छांट कर उन्होंने इन चारों को रखा है। दो प्रकार के राग रख दिए और दो प्रकार के द्वेष रख दिए, क्योंकि आप देख लेना कि इन्हीं के आवेश में असत्य वचनों का प्रयोग होता है। फिर माया वगैरह तो बाद में पीछे से उनको मदद देते हैं कि इस तरीके से बोल, पकड़ में ना आए, वो सब सपोर्टिव है। मेन तो लोभ है, तो गुस्से में कभी झूठ बोलने में आ जाता है, लोभ के कारण झूठ बोलते हैं लोग, तो स्पष्ट है सबको पता ही है, फिर डर के कारण झूठ बोलते हैं, तूने ऐसा किया, नहीं 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 मैंने मैंने बिल्कुल नहीं किया, हास्य हंसी मजाक में झूठ बोलते हैं, हंसी मजाक में तो प्रायः बोलते हैं झूठ, दोस्तों के बीच में जितना झूठ चलता है वो हंसी मजाक में चलता है, फिर अनुवीची भाषण अज्ञान जनित असत्य से निवृत्त होने के लिए होता है, तो सत्य व्रत पूरी सुरक्षित सुरक्षा को प्राप्त हो जाता है, अगर ये पांच भावना का अर्थ थे यहां पर, वैसा परिणमन करना, देखिए भावना की परिभाषा दी है, वीर्यांतराय क्षयोपशम चारित्र मोहोपशम क्षयोपशमांगु पांग नाम लाभापेक्षात्मना भाव्यन्ते ता इति भावना। देखो क्या क्या आवश्यक है भावना भावने के लिए, तो आचार्य कहते हैं कि वीर्यांतराय का क्षयोपशम मतलब शारीरिक शक्ति चाहिए, चारित्र मोह का उपशम क्षयोपशम चाहिए, यह भी जरूरी है, और क्या चाहिए, अंगोपाम नाम कर्म का भी उदय चाहिए, तो अपने शरीर के अंगोपांग अगर सही सलामत होंगे तो अपन इन चेष्टाओं में प्रवृत्ति कर सकेंगे, तो ये भावना जो होती है चेष्टा रूप होती है, इसमें तीन प्रकार के कर्म बता दिए, वीर्यंत्राय चारित्र मोह और नाम कर्म, तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये भावना कामना रूप नहीं है, मेरी भावना है कि तुम वहां आ जाना, अरे वो भावना तो अभिलाषा कहलाती है, हार्दिक अभिलाषा को भावना कहते हैं, पर यहां पर क्या है, यहां पर भावना का अर्थ है वीर्यांतराय का क्षयोपशम का अर्थ है कि शक्ति चाहिए आपके अंदर, फिर चारित्र मोह का उपशम क्षयोपशम का अर्थ होता है कि आपके अंदर वो देश चारित्र या सकल चारित्र की लब्धि चाहिए, और उसके साथ में कह रहे हैं अंगोपांग नाम कर्म का भी उदय आवश्यक है, तो इसका मतलब यह है कि आपका शरीर सही सलामत ठीक ठाक हो, तो इससे क्या होगा बताओ आप, इससे जो भावित की जाती है उसको भावना कहते हैं, तो इससे क्या भावित की जाएगी, क्रियाएं होंगी, और ये क्रियाएं ही तो है वचन गुप्ति मनोगुप्ति ईर्या समिति आदान निक्षेपण समिति आलोकित पान भोजन, ये कोई अभिलाषाएं नहीं है, ये आचरण रूप है, तो इस तरह आज अपन ने पांच सूत्र का स्वाध्याय किया है और बड़ी सुंदर सुंदर जानकारियां भी प्राप्त की है, तो सत्य के लिए क्या बोला, क्रोध छोड़कर बोलना, लोभ छोड़कर बोलना, भीरुत्व छोड़कर बोलना और हास्य छोड़कर बोलना, द्वेष राग इस क्रम से रखा उन्होंने, और देखिए इसमें क्या किया, पहले कषायों को रखा फिर नौ कषायों को रखा, क्रम देखना ध्यान से, हास्यादि षट में से भीरुत्व और हास्य को रखा है और क्रोधादि चतुष्क में से क्रोध और लोभ को रखा है, तो क्रोध और भीरुत्व जो प्रथम है दो जोड़े में से वो द्वेष रूप है और जो द्वितीय है लोभ और हास्य वो राग रूप है, तो राग द्वेष को छोड़कर कषाय रूप और नौ कषाय रूप राग द्वेष को छोड़ करके फिर आगम के अनुसार वचन बोलने पर असत्य का दोष नहीं लगता। जैनम जयतु शासनम।